सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर। हमारे साथ आज जुड़ी हैं सुषमा यादव, शिक्षा विशेषज्ञ। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद
सुषमा जी। चूंकि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और आज की जो हम बात की शुरुआत करते हैं वो इससे हम जरूर करेंगे कि आज के समय में महिलाओं की भागीदारी को लोकतंत्र की गुणवत्ता से जोड़ने की हम खूब बात कर रहे हैं, तो एक आधारभूत शिक्षा जो होती है वो इसके माध्यम में कितना अपना महत्व रखती है, या फिर हम इसे कहें कि दोनों चीजों को ये मजबूत किस तरह से बनाती है।
सशक्तिकरण का जो पहला स्तंभ होता है वह शिक्षा होती है, क्योंकि शिक्षा आपको मात्र जानकारी नहीं देती, सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की शक्ति देती है। तो यदि हम लोकतंत्र को उसके आधार पर सुदृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो एक सुविचारित और सुशिक्षित महिला नारी उसका आधार बनेगी, ये विश्वास भी पूर्ण विश्व करता है और भारत भी करता है। इसलिए मैं समझती हूँ ये बात आपने जो कही है, शिक्षा उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और पिछले वर्षों में स्वतंत्रता के बाद से यदि मैं कहूं, क्योंकि मैं शिक्षा में रही हूं, बहुत तेज गति से महिलाओं को उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में, सब जगह पर बराबर तो नहीं कहूंगी लेकिन उन्हें समाविष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बराबरी इज नॉट ए वेरी गुड वर्ड, लेकिन उनको अधिक से अधिक उसमें सहभागी बनाया जा रहा है। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो बहुत कम विश्वविद्यालय थे, लगभग 400 से, जो पिछले वर्षों में अब 1200 से ऊपर विश्वविद्यालय हो गए हैं, 40,000 से ऊपर महाविद्यालय हो गए हैं, और इनमें भी बहुत से ऐसे हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं। तो इससे महिलाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाता है। और अब अगर कहना चाहूं तो देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि महिला कुलगुरु भी हों, ताकि बच्चियों को उससे आदर्श भी मिले सामने और सशक्तिकरण भी हो कि कल हम भी उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि ये बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा का पहले प्रसार हो। और इसीलिए यदि आपको याद हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस जिले से आरंभ किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस जिले में महिलाओं का रेशो पुरुषों की तुलना में सबसे कम था, पानीपत और सोनीपत वो स्थान रहे हैं, और मैं वहां के एक महिला विश्वविद्यालय की कुलगुरु रही हूं, तो उस स्थान को भी मैंने देखा है, उस परिवर्तन को भी मैंने देखा है कि जैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी लाडली, ये सब योजनाएं आरंभ हुई तो माता पिता का रुख भी बदला और बच्चियों का भाव भी बदला, और शिक्षा के साथ साथ अवश्य ही वो अपनी कर्तव्यों के विषय में, अपने अधिकारों के विषय में, अपनी शक्तियों के विषय में और अंततः समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने की दिशा में सोचना आरंभ करती है।
सुषमा जी, आपने जिस तरह से प्रधानमंत्री का जिक्र किया है, अगर हम उनकी सोच की बात करते हैं तो उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, तो उनकी जो सोच है अगर हम बीते कुछ वर्षों में देखें तो इस सोच ने, ग्रामीण महिलाओं की बात भी करें और शहरी महिलाओं की बात करें, तो शिक्षा को कितना ज्यादा परिवर्तित किया है।
शिक्षा को तो परिवर्तित किया ही है, पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें हम, तो उन्होंने तो हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और हर क्षेत्र के विषय में सोचा है। पहले शिक्षा, क्योंकि मैं उस विषय से हूं और आपने पूछा भी है, तो यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो जो स्टेम प्रोग्राम चल रहा है, वुमेन इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट, कि अधिक से अधिक महिलाओं को उसमें लाया जाए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, महिला उद्यमिता कार्यक्रम विशेष तौर पर बनाए गए हैं, महिलाओं को डिजिटल भारत के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। और आप देख रहे होंगे जो ड्रोन दीदी की समस्या, ये माननीय प्रधानमंत्री के मस्तिष्क की उपज है, जो ड्रोन दीदी का कार्यक्रम चलाया है, और मैंने देखा है बहुत सुशिक्षित नहीं है वो महिलाएं, ग्रामीण है वो महिलाएं, शहरी भी नहीं है, लेकिन इतना अपने आप को सशक्त महसूस करती है। मैं मिली हूँ एक दो ऐसी महिलाओं से जो ये समझती है कि वो लगभग इंजीनियर जैसा काम कर रही है जब वो ड्रोन का प्रयोग कर रही है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की सोच शिक्षा के बारे में जो है, कि अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिलना चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में मात्र वो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जो हम कहते थे वही नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, अगर अभी भी बात करें तो देश के अनेक बड़े विश्वविद्यालयों जिनमें JNU है, जिनमें ये अभी नीपा हमारा दिल्ली में ही है, सबसे बड़ा विश्व का विश्वविद्यालय जो इग्नू है, वहां भी महिला कुलगुरु हैं, अलीगढ़ में महिला कुलगुरु हैं, श्रीनगर में महिला कुलगुरु हैं, तो ये प्रयास किया गया है कि इसको सिंबॉलिक तो है ही, लेकिन महिलाओं को, बच्चियों को, स्त्रियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त ये होती है कि शिक्षित मतदाता हों। शिक्षित मतदाता होंगे तो वे अवश्य ही अच्छे प्रतिनिधि भी चुनेंगे, और यदि महिलाएं आएंगी सुशिक्षित भी होंगी, मतदाता भी सुशिक्षित होंगे, तो अवश्य ही वो अच्छे नेतृत्व की पहचान करेंगे और अच्छे नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास करें।
सुषमा जी, भविष्य में विकसित भारत के लिए जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, हम सभी उस दिशा में करने के लिए अपने स्तर पर लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, तो महिलाओं की भूमिका को प्रधानमंत्री जी ने बहुत अहम बताया है, तो महिलाओं की भूमिका तो अहम है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने में हमारी आज की शिक्षा की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए?
दो बातें हैं, और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम एक प्रकार से वो संदेश ही दिया है जो आज के बहुत से अखबारों में भी है और सोशल मीडिया में भी सुर्खियों में ही है, जहां उन्होंने बात की है कि हमें विकसित भारत बनाना है तो वह महिलाओं के साथ ही बन सकेगा और उसमें महिलाओं की सहभागिता होगी, क्योंकि वह हमारी आबादी का, हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का 50% है। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जोड़ा है इसको महात्मा फूले की जयंती से और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती से, 11 से 14 अप्रैल जो ऐतिहासिक दिवस है उनसे जोड़कर उन्होंने बात की है, क्योंकि उन दोनों ने ही महिला शिक्षा, महिला समानता और महिला की प्रगति के विषय में बात की, और ये भी कहा है दोनों ने कि कोई भी समाज विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं विकसित नहीं होती या उनकी प्रगति नहीं होती। इसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज लिखा है, वैसे तो वो हमेशा ही कहते हैं, और आपको याद हो जब G20 हुआ था तो उन्होंने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी कि विकसित राष्ट्र वो होगा जहां महिला विकास का नेतृत्व करेगी, और इसलिए जो विकसित भारत का उनका सपना है उसमें महिला केंद्र में है। वैसे तो उन्होंने 5 बिंदु दिए हैं लेकिन उन्हें महिला है, और महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जनधन योजना, मुद्रा योजना, हुनर हाट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या महिला उद्यमिता, और स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने की बात की है। ये सब जुड़े हुए हैं उसकी सशक्तिकरण से। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शिक्षा है, विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना जो ग्रामीण समुदाय तक पहुंचती है, महिलाओं की गरिमा की वो बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की जो बात करते हैं उसमें भी आधा हिस्सा महिलाओं का उससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, और इसलिए मातृ वंदना योजना जैसे यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसी तरह से महिला के मातृत्व को पहचान, उसको गरिमा, उसको सम्मान देने की बात उन्होंने की है, और साथ ही साथ जो हिंसा और महिलाओं के प्रति एक भेदभाव अभी तक समाज में होता रहा था उसको दूर करने के लिए लैंगिक हिंसा के विरुद्ध कानून को सुदृढ़ करना, निर्भया पहचान करना, त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र का विकास करना, ये सब उन्होंने किया है। और मैं समझती हूँ कि विशेष तौर पर महिलाओं को उन क्षेत्रों में समान भागीदारी देने का जो उनका विचार है, चाहे वह फौज हो, स्थायी कमीशन की बात उन्होंने आज भी की है कि सशस्त्र बलों में बेटियों को स्थायी कमीशन मिलेगा, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कहा है कि भारत के 48% जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं उनमें सभी में कम से कम एक महिला डायरेक्टर होनी आवश्यक है, बोर्ड रूम्स में भी अब महिलाओं की उपस्थिति होने लगी है। ये सब चीजें शिक्षा से जुड़ी हैं, और आपको याद हो मंगल अभियान के दौरान भी महिला वैज्ञानिक जो बिल्कुल भारतीय महिला का एक एपिटम थी, जिसको कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव स्वरूप थी, लेकिन वो वैज्ञानिक उस यान के पीछे की सफलता का कारण थी, आधार स्तंभ थी। तो सभी क्षेत्रों में वो चाहते हैं महिलाएं पहुंचे, और राजनीति उनमें से एक महत्वपूर्ण
जी। मैं इसी प्रश्न पर आना चाह रहा था कि आपने भागीदारी की बात आपने कही है, राजनीति की अगर हम बात करते तो संसद की हम बात करते तो महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने की बात हो या फिर आरक्षण की बात हो वहां पर, तो उसमें जो महिलाओं की उपस्थिति होगी जाहिर सी बात है संख्या उसमें बढ़नी ही है, तो इसमें राजनीतिक शिक्षा महिलाओं को मिले क्या ये महत्वपूर्ण है, या एक नॉर्मल एक शिक्षित महिला जो होती है वो रिप्रेजेंट बेहतर करी, या राजनीतिक शिक्षा इसमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल रखती है?
देखिए, वैसे तो मैं महिला होने के नाते ये कहूंगी कि पुरुष कौन सी राजनीतिक शिक्षा लेकर के संसद में जाते हैं
जी,
ऐसी कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं होती, तो महिलाओं के लिए भी वो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए शिक्षा आवश्यक है ये मैं मानती हूँ। जबकि भारत ने तो यह भी पूरे विश्व के सामने जता दिया है कि विजडम इज मोर इम्पोर्टेंट इवन देन एजुकेशन, ग्रास रूट्स पर जहां जहां 33% रिजर्वेशन लगा था, अधिकांश जगह लगा था, और उन राज्यों की राजनीति उठाकर देख लीजिए, 33% से वो 40 हुआ, 40 से 45 और 50 55 तक जा चुका है। वह इस बात की ओर संकेत करता है कि महिला जब नेतृत्व संभालेगी तो उसमें जो नर्चरिंग की पावर है
जी,
उसमें जो मातृत्व है उसमें जो बाकी सबके हित को ध्यान में रखकर चलने की बात है, सबको साथ लेकर चलने की बात है, जो इमोशनल एम्पति है वह उसको एक अच्छा लीडर बनाएगी, एक अच्छा नेतृत्व का स्वरूप प्रदान करेगी। और इसलिए भारत का भविष्य मैं समझती हूँ बहुत उज्ज्वल है, और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री अपने हृदय से और अपने प्रयासों से ये बात कह रहे हैं कि जो नेतृत्व महिलाओं से होगा वह अवश्य ही एक समावेशी प्रतिनिधित्व भी होगा और समावेशी नेतृत्व भी होगा।
सुषमा जी, इसी से जुड़ा एक और मेरा प्रश्न है आपसे। शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करते हैं तो वहां कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं जहां पर युवाओं को तरह तरह के मौके दिए जाते हैं लीड करने के लिए, और अगर हमारे सरकारी स्तर पर देखें या सरकार के प्रयासों से हम देखें तो युवा संसद का आयोजन भी किया जाता है। यहां पर एक चीज जो मेरे जहन में आई वो ये है कि अगर हम युवा महिला नेताओं को तैयार करने की बात करते हैं तो उसमें किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता आपको लगती है?
कुछ तो मैं जानती हूँ, बहुत से प्रशिक्षण स्थल हैं जहाँ अभी से वो हो रहा है, जैसे एक मुंबई में रामभाव महालगी है, एक और स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, बहुत सारे ऐसे मैं जानती हूँ संस्थान जो ये प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार किया जाए। मैंने अप्रोच मी ऑल्सो, आई बीन ट्रेनिंग ऑल्सो, तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे अभी तक तो संस्थान कर रहे थे, अब विश्वविद्यालय भी, जैसे विश्वविद्यालयों में मदन मोहन मालवीय टीचर एजुकेशन सेंटर्स बनाए हमने, विमेन डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं, सेंटर्स फॉर सोशल इंक्लूजन बनाए हुए हैं, तो बहुत सारा वहां पर भी स्कोप है हम समझते हैं। और जल्दी ही विश्वविद्यालय इस प्रकार की ट्रेनिंग्स को भी आरंभ करेंगे, बिकॉज दे हैव साइकोलॉजिस्ट, दे हैव पॉलिटिकल साइंटिस्ट, दे हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीपल, दे हैव सोशियोलॉजिस्ट, कुल मिलाकर, एंड लॉ भी लगभग सभी जगह पर है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में महिला संसद जैसे भी आयोजन होंगे
जी।
और जो युवा संसद होती है उसमें महिलाएं अभी भी सहभागी हैं, लेकिन यह जो अधिनियम है यह अवश्य ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि हम महिलाओं को नेतृत्व की ओर आकर्षित भी करेंगे, प्रशिक्षित भी करेंगे, उन्हें सशक्त भी करेंगे और भारत के सुंदर भविष्य का एक तरह से रोड मैप तैयार करेंगे।
सुषमा जी, अभी आपने भागीदारी बढ़ाने की बात की थी, उच्च शिक्षण संस्थानों का आपने जिक्र भी किया था जहां पर महिलाओं के मतलब नेतृत्व में कामकाज होते हैं। अगर छोटे स्तर की हम बात करते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में हम देखते हैं वहां पर महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है, ऐसे ही जो छोटे छोटे संस्थान होते हैं, जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, इस तरह के और भी संस्थान सीखने और सिखाने के होते हैं, उनमें भी लगता है कि आपको इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए जो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दें, साथ में उनके अंदर नेतृत्व की भावना को भी अच्छे से उत्पन्न कर सकें।
निखिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी ये कार्यक्रम हो रहे हैं
जी,
दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। जब हमने 33% रिजर्वेशन पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज में किया था, और अब जैसा आप कह रहे हैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, मुझे पूरा विश्वास है हर विश्वविद्यालय अभी भी चल रहे हैं विश्वविद्यालयों में
जी।
और स्पेशली विमेन लीडरशिप प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं बहुत स्थानों पर, तो अब वो और बढ़ेंगे, उनका दायरा बढ़ेगा, उनकी दृष्टि बढ़ेगी और अंततः मिशन मोड में मुझे लगता है अगले 2 वर्षों में, मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ, विश्वविद्यालय इसके लिए तैयार बैठे हैं, हमारा समाज इसके लिए तैयार बैठा है, और इसलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ेंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी और अंततः एक ऐसा महिला नेतृत्व इस राष्ट्र को प्राप्त होगा कि वह भारत के भविष्य को विकास की ओर तो ले ही जाएगा, विश्वगुरु बनने की ओर भी एक बेहतर परिस्थिति का निर्माण करेगा।
जी सुषमा जी, बहुत बातें हमारे साथ में साझा की हैं और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाता, लेकिन समय फिलहाल हमें अनुमति नहीं दे रहा कि ज्यादा और आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हो, तो फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ ये अधिनियम भारत के लोकतंत्र का एक सुदृढ़ स्तंभ साबित हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नमस्कार
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में